भजन संहिता 52। भजन 52 प्रधान वादक के लिए है। ये भजन दाऊद की प्रार्थना है। ये कविता या गीत है। इसे उसने उस समय लिखा था जब दोएग एदोमी ने शौल को बताया, दाऊद अबीमले के घर गया है। जब दाऊद शौल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, वो बेतेल को गया। वहां उसने याजक से अपने और अपने लोगों के लिए भोजन मांगा। याजक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस अर्पण की हुई रोटियां जिन्हें केवल याजक खा सकते थे। वेदी की मेज पर 12 रोटियां रखी थी और हरेक रोटी इसराइल के 12 में से एक गोत्र को दर्शाती थी, और वे मेज पर इसलिए रखी थी कि परमेश्वर को इन 12 गोत्रों की बराबर याद दिलाई जा सके। वे मंडप में दाईं ओर रखी जाती थी, अर्थात जब याजक मंडप में प्रवेश करता था तब दाईं ओर इन 12 रोटियों की मेज होती थी। जब हम रोटी कहते हैं तब बहुत लोग सोचते हैं डबल रोटी, परंतु वास्तव में ये रोटियां हमारी रोटियां जैसे गोल होती थी और सेकने पर वो फूल जाती थी। ये अच्छी होती थी और अपने अंदर काफी पदार्थ रखती है। इस प्रकार की रोटियों को चबाकर खाते हैं और खाने से पता चलता है कि ये स्वादिष्ट रोटियां हैं। बेतलहम में हॉकी चर्च, जहां वे कहते हैं यीशु पैदा हुआ, उसके नीचे गुफा है और पर्यटक यीशु के जन्म स्थान को अवश्य देखना चाहते हैं, इसलिए उनके पास हॉकी परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार वे आपको उस गुफा का सैर कराते हैं। मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता। मार्गदर्शक मुझ पर हंसता है और कहता है, इस वर्ष तुम इन्हें अंदर ले जाओगे, अर्थात मेरे साथियों को। वो स्वयं वहां जाना नहीं चाहता है। मुझे तो वहां की सड़कों पर घूमना अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ एक छोटी सड़क पर एक भट्टी वाला है जिसके पास ये रोटियां होती हैं। वो अच्छी रोटियां बनाने वाला है। उसके पास अपना तंदूर है। महिलाएं वहां बड़े बर्तनों में गूंदा हुआ आटा लेकर आती है और वहां छोटे से अंधेरे कमरे में बैठ जाती है। उस आटे को वो तंदूर में रखता है। उसके पास बेलचे की तरह बड़ा चम्मच होता है। इसका उपयोग वो भट्टी में से कोयला हटाने के लिए करता है। ये महिलाएं वहां बैठकर एक दूसरे से मिलती है और सबके पास अपने गूंदे हुए आटे का बर्तन होता है। जब उनकी बारी आती है तब थोड़ी थोड़ी देर में आटे को गूंथती रहती है और रोटी बनाने वाला गूंथे आटे को आटे के तख्ते पर रखकर फिर गूंथता है, जिसकी रोटियां बनाकर तंदूर में डालता है। जब सारी रोटियां पक जाती हैं तब वो उन्हें बर्तन में डालती और कपड़े से ढककर सिर पर रखकर ले जाती है। आप इन महिलाओं को सिर पर रखे आटे के साथ आते जाते देख सकते हैं। यदि आप भूखे हैं और इन महिलाओं को देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ पैसा भी आपके पास है तो आप रोटियां खरीदकर खा सकते हैं। मैंने हर बार यहां से रोटियां लेकर खाई है। गरम भट्टी से निकली रोटियां बहुत स्वादिष्ट होती है। ये वैसी ही रोटियां हैं जैसी 3000 वर्ष पूर्व दाऊद के समय में होती थी। ठीक उसी तरह की रोटियां, इसलिए मुझे वहां जाना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे में आप इतिहास में लौट जाते हैं। उस हॉकी चर्च में बड़े दिन की सब सामान्य चीजें थीं, क्रिसमस ट्री के आभूषण और अन्य सजावट की वस्तुएं भी। मुझे इसे दुख होता है। पर वो रोटी मुझे सुख देती है, इसलिए मुझे सड़क के ऊपर की तरफ जाना और रोटी बनाना देखना अच्छा लगता है। वेदी पर बस ऐसी ही यही रोटियां थीं। वे इन रोटियों को बदलते थे। उन्हें इन रोटियों को सप्ताह में एक बार बदलना होता था। और जब याजक इन रोटियों को खाएगा, कोई और इनको ना खा सकेगा। परंतु दाऊद अपने लोगों के साथ आया जो भूखे थे, और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? याजक ने कहा, जो मेरे पास है वो केवल वेदी की रोटियां हैं। दाऊद ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। तब उसने उन्हें वेदी की रोटियां दी। इन रोटियों को खाना दाऊद के लिए आज्ञा अनुसार मना था। परंतु ये दिलचस्प है कि परमेश्वर के नियम लचकदार हैं। जब एक मनुष्य भूखा हो तो नियमों को थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता है, कोई इसे ना खाए, परंतु याजक ही। ये जीवन का नियम है। भूख ने नियम को बदला। नए नियम में यीशु ने भी स्वीकार किया कि दाऊद ने ठीक किया था। जब फरीसी सबत की रोटियों के विरुद्ध यीशु को फंसाना चाहते थे, तब यीशु ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब दाऊद भूखा था उसने क्या किया? कैसे मंडप में जाकर उसने अपने लोगों के साथ भेंट की रोटियां खाई हैं? नियम अनुसार इन रोटियों को खाने की मनाही थी। उन्हें सिर्फ याजक ही खा सकता था। और यीशु कह रहा था कि महान राजा दाऊद के समय में भी मनुष्य की आवश्यकता के कारण नियम को बदला गया था। बात इस प्रकार थी कि एक मनुष्य सबत के दिन बीमार हो गया, और फरीसी नहीं चाहते थे कि यीशु उसे चंगाई प्रदान करे, क्योंकि वो सबत का दिन था। यीशु ने दाऊद का उदाहरण ये बताने के लिए दिया कि मनुष्य की आवश्यकताएं सबत के दिन की रीतियों और नियमों से ऊपर हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं महत्व रखती हैं। यीशु ने कहा, क्या सबत के दिन जीवन बचाना उचित है या मारना, भलाई करना या बुराई करना? इसलिए चाहे सबत का दिन हो, मनुष्य की आवश्यकताएं उससे बड़ी हैं और आपको उनकी सहायता करना चाहिए। जब दोएक शौल के पास आया, उसने कहा, दाऊद वहां गया था और याजक ने उसकी सहायता की। उसने उन्हें रोटी और गोलियात की तलवार दी, और शौल क्रोध में अंधा हो गया और याजक तथा उसके पुत्रों को मार डाला। दाऊद इस घटना के पश्चात दुखी हो गया। दोएक जिसने शौल को बताया कि वो वहां है, इसलिए ये भजन एकदम दोएक के खिलाफ लिखा गया है। भजन संहिता 52 पद 1 से लेकर 9 तक। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सन धरे हुए उस्त्रे की नाई वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और अधर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने मन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। इस तरह दाऊद की प्रार्थना उस व्यक्ति के बारे में है जो याजक की मौत का कारण था। इस याजक ने दाऊद की सहायता की थी।